तवैवास्मि न जीवा विद्या विना इति विज्ञाय राधे सन्नै मनुष्य महाप्रभु जी ने परस्पर संवाद कर रहा था और उनका उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार में बतला रहे हैं राय रमन जी ने महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने हमारे हृदय के अंदर में कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व राज तत्व विलास तत्व ये सब चीजों का पूर्ति कराई हमारे अंदर। और फिर जैसे सुख पक्षी को कोई पढ़ा करके तैयार करके फिर उसे सुनता वैसे ही आपने किया ऐसे समुद्र अपना पानी लेखों में संकलित करके उसी से ग्रहण करके अपने सिर और घोड़े में रत्न बन करके रत्न या रत्न सब और कुछ नहीं समुद्र का पानी ही समुद्र में गिर करके और रत्न बना। लेख में वो रत्न नहीं उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं रत्न आकर हैं। इन्हीं से ये विचार सुनने गया फिर कैसे गया वो बारीकी से जो किस किस विषय के वैज्ञानिक है वो समझे साधारण आदमी नहीं समझे। अंतर्ज्ञानी रूप से भगवान इस वक्त यही रुचि है कि अंतर्ज्ञानी रूप से किसी के हृदय में वो हस्त्र प्रेरणा करता कुछ चीजें हैं अपने साधन और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कृपा शिक्षण ऊपर से अवतरित होती है। हम चेष्टा कर सकते हैं किंतु वो भाव आएगा कि नहीं आएगा वो भाव के अधीन है। वो भगवान ही भाव है या राधा जी वो भाव है तो वो जब कल्पना करके देखेंगे कि हमारे यहाँ पर प्रकाशित रहने का क्षेत्र में हो गया तो भाव में नहीं चले। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा कि हमने उनकी नाभि कमल से हमें पैदा होकर के अनंत काल तक ऊपर नीचे घूम करके इसका आदि खोजने की चेष्टा की किंतु नहीं बात। इसलिए हम लोगों की चेष्टा का अधिक मूल्य नहीं है। यदि हम दिन दिन अकिंचन बन करके अनकंडीशनल सरेंडर करके रोए गाये खिमियाए तो वो चीज हमारे अंदर में ब्रह्मा जी निराश हो गई भगवान के शरणागत हो गए तो उन्होंने उसका अंदर में उत्तर जाने पहले उसको ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ भगवान ने देखा इसको ज्ञान हुआ अनुभूति तो हुई नहीं तो भगवान ने क्या किया गृहान गतम कृपा करके लो मैं तुम्हें देता हूँ ये कर करके अपना गांव ज्ञान उनके अंदर में सबसे उनकी यथा अहम यथा जावान यथा भाव जब रूप में करण कर जैसा नाम अपनी चेष्टा से वो लाख कोटि जन्मों में नहीं उन्होंने ये भी बतलाया 50,000 वर्ष तक दिव्य वर्षों से अपने वर्ष से हमारे वर्ष आपके वर्ष से नहीं अपने वर्षों से कठोर आराधना की सभी गोपियों की चरण धूली विनंती उनको जगत का की सृष्टि इत्यादि करने का ये ज्ञान तो मिल गया, किंतु गोपियों की चरण रज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं, अपने आप होने का, इसलिए ये ज्ञान सहज नहीं। और ऐसे ही हम लोगों को एक दिन में नहीं हुआ, जब नहीं हुआ कहूँ ये है नहीं या होगा ही नहीं, निराश हो जाने वाला गर्भ, कभी निराश मत हो, इसलिए बतलाया ना उत्साह नित्य हरिया सतम हो। आने से निराश हो जाएगा तो कुछ जो मिलने वाला था वो भी नहीं, कभी निराश मत। हमारे समीक्षकों को देखने से ऐसे ही मालूम होता है, इंद्र और विरोचन गए ब्रह्मा जी के पास में, वो खबड़ा करके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य करके विरोचन आ गया, मैंने समझ लिया ये मान लिया, बस वही तक रहा, ये सरेगी सर्वस्व। और इन विवेचना करके पुनः पुनः उनके पास में गए, तब अंत में उन्होंने पूरे आत्मज्ञान, वो भी आत्मज्ञान मिला और कुछ अभी परमात्म का ज्ञान नहीं मिला, रस विचार उनको नहीं मिला। हम लोग जो चीज चाहते हैं ना जुट कर, हम लोग कुछ नीचा वाला कुछ भी नहीं चाहे, कोई भी होगा हम तो दे सकते हैं। राधा जी की दासी, अरे जो ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, नारद को नहीं मिला, उद्धव नहीं हो सकते, और वो चुटकी बजाते ही जाएगा, ऐसी धारणा मत करो। जब भी 1,00,000 जन्म भी मिले तो समझे बहुत जल्दी, तो उसी का मुझे बता रहे हैं कैसे उनको मिला, उसी के लिए मारे। ब्रह्मसूत्र का यह भाष्य, ब्रह्मसूत्र गायत्री का भाष्य, और गायत्री ओंकार प्रणव का ये विस्तार है, उसमें भूभुवः स्वः जो तीनों देवतियां हैं ये संसार है, संसारी का शक्ति जब तक भूभुवः स्वः में रहेगी तब तक वो बहुत दूर है, इसलिए इसके ऊपर बुद्धि उठेगी, अर्थात अवांग मन सह गोचर जब हो जाएगा और उसके शरणागत होंगे तो भर्ग देवस्य स्वयं, तो भर्ग देव कृष्ण ही है, अपनी शक्ति को पहले प्रकाश करेंगे, जो सूर्य को भी शक्ति प्रदान करने वाली है, तब फिर वो अपनी कृपा करके और सब यहाँ पर प्रतीत हो। तो उसी में धियो जो धीय माने बुद्धि व्यक्ति, मैं उनका ध्यान करता हूँ किस लिए, किस प्रयोजन के लिए, हमारे हृदय में इसलिए ध्यान करता हूँ, उसी को की मध्यागत किसी से श्लोक में बदला है, सत्यम परमा, मैं जो परम सत्य वस्तु का मैं ध्यान करता हूँ किस लिए, प्रयोजन क्या, वो भी हमारे हृदय में उदित हो इसलिए, उसी के लिए यहाँ पर पहला श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। वेदांत सूत्र ने पूछा अर्थात ब्रह्म विद्या, शंकराचार्य इत्यादि ने बतलाया कि जगत जगत को नश्वर जानने के बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा, हमारे जीव गोस्वामी इत्यादि ने कहा कि शुरू में मानता हूं तो कहो, तब फिर उत्तर में मानता नहीं, जब जगत में कहीं भी सुख शांति न मिले तो परतत्व को जानने के लिए गुरु के पास में प्रश्न करो, तस्मात् गुरु प्रपद्येतः ज्ञातु स्वयं उत्तम, तो ये उत्तम से को जानने के लिए उत्तम कल्याण हमारा करके होगा, जब तक वो वस्तु हमारे हृदय में आविर्भूत नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण, तो उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। व्यास जी कहो या सुखदेव गोस्वामी कहो, व्यास जी वंदना और मंगलाचरण में ही वस्तु का निर्देश इसका प्रतिपाद जभी है क्या है सिमस्था लोग इसी श्लोक में बदला कैसे उनको जाना जाएगा इस विषय को भी बदला और वस्तु है क्या सब प्रकार से इनको सोच विचार करके सब ये बंधन सप्तम परम भी नहीं कुछ लोग कहते हैं एक बड़े विद्वान यहाँ से कह रहे सप्तम परम भी ने तो कृष्ण की वंदना यहाँ पर की नहीं गई तो ये कृष्ण ही श्रीमद भागवत के प्रतिपाद्य विषय है या उनका प्रेम ये कैसे समझा है तो हमने जी गोस्वामी का विचार उनको बतलाया ये सत्यम परम परतत्व जो है वो सत्य स्वरूप है वो कौन है भागवत में ही बतलाया गया सत्य सत्य सप्तम तो ये सत्य किसके लिए कहा गया जो देवकी के जठर में है गर्भ में है गर्भ स्थिति के समय में देवता होता इसलिए कृष्ण ही वही परम है अहो भाग्यम अहो भाग्यम परम परम जन्मादस्य जलः अन्नयादिकर्तस्य अर्थो अभिज्ञेयत्वा ते ब्रह्मनिराजाद् कवये मुञ्जन्ति जत्सूत्र ते रूपाद्विकां तथा विष्णु जपस्तु सर्वोऽहं मुक्ता सामना से निरक्त को सत्यं परम हम लोग संक्षेप में इसका कुछ अर्थ पहले हम लोग साधारण रूप में भक्ति विनोद स्थापित की थी तो क्या है भगवत मरी की माला से इसका अर्थ कहेंगे तो समझे नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों ने जीव गोस्वामी और सब लोगों ने लिखा है वो समझ भी नहीं वो समझ में आना बड़ा इसकी कितनी टीकाएं हैं इसका ठीक नहीं एक सौ आठ टीकाएं तो मिलती हैं और कितने हैं इसकी टीका टिप्पणी भाग से अनुभाग से कितना है समस्त विद्वानों ने अपनी विद्या की सीमा यहीं पर लेकर के क्या जैसे जन्मादत्त जता वो ब्रह्मसूत्र का अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा के बाद वाले में जितने बड़े बड़े विद्वान है बस चार सूत्रों पर विशेष विचार और उसी में समस्त वेदांत सब उसी में लिया वही की विद्या उनकी वही सब वैसे ही इस श्लोक में उन लोगों ने बड़े बड़े व्यवस्था कारण हम उस टीका में से थोड़ा सा हम इस पर प्रभाव भक्ति विनोद ठाकुर जी उनकी भगवता कुमारी की नाला में
आदमी जी अर्थ कर रहे हैं तो कॉल करते हैं
तो ये बतलाते हैं सत्यम परम पर माने यहाँ पर परम तत्व वस्तु अद्वैत ज्ञान पर सत्य जिसको भागवत ने कहा वही परम सत्य सत्य त्रिकालिक सत्य जी वो परम सत्य मैं उनका ध्यान कर निरस्त पूर्व उसमें कोई वंचना इत्यादि नहीं है माया नहीं है किस प्रकार से वो सत्य है इस तत्व का को निरूपण करने के लिए एक उनका शुद्ध स्वरूप का वर्णन कर और एक गौण रूप से अन्य और व्यतिरेक दो रूपों से वर्णन कर। पहला जो ये जो उन्होंने कहा सत्यम परम अधिग्रही, यही भगवान का शुद्ध स्वरूप है। वो कहते हैं सर्वकाल में सत्य है, सर्वकालिक सत्य है, सर्वशक्तिमान है, रस के समुद्र है, वही परम तत्व है, समस्त अवतारों के अवतारी। उन्हीं को कुछ लोग ब्रह्मा, कुछ लोग परमात्मा, कोई लोग स्वयं भगवान प्रजन्न नंदन कृष्ण के रूप में, यही परमात्मा। ये अपने धाम में नित्य काल अवस्थित रह सके, वहीं पर निरस्त हो, अर्थात वहां पर माया नाम की कोई चीज नहीं। रीते अर्थम जगत प्रत्येक न प्रत्येक चार, माया किसको कहते हैं जो स्वरूप तत्व से बाहर है, स्वरूप तत्व में जिसकी अभिव्यक्ति कुछ नहीं है, वो वास्तव में यथार्थ अर्थ अथवा कृष्ण ने अपने समस्त समय अपने धाम में अर्थात गोकुल ब्रज मथुरा और द्वार सब समय वहीं पर नित्य वहां पर प्रकाशित है, वहां पर माया है, यही उनका स्वरूप। और इतर स्वरूप को वर्णन करने के लिए हम लोगों के यहाँ यह रूप तो प्रकाशित नहीं है, तो उस रूप को गौण रूप में प्रकाशित करने के लिए कह रहे हैं जन्मासत्य जगत, वही सत्य स्वरूप जो परम सत्य वस्तु है, वो जगत में आदिभूत होकर के अपने अवतार से या कलाओं से या तद्रूप वैभवों से वो इस जगत में प्रकट हो, वो सर्वशक्तिमान अखिंद सिंधु है, वो प्रभु उनकी पराशक्ति एक है, वही शक्ति विविध धैर्य क्रिय से विविध रूप में सुनी जाए। एक ही शक्ति के तीन प्रकार हैं, वो है संबित संधिनी तो वही शक्ति तीन रूपों में परिणत होती है। परिणत माने क्या?
प्रकाश
ब्रह्माधिकारी नहीं है वो, अपर अपरिणामी है, उनकी शक्ति ही तीन रूपों में परिणत। कैसे? किस जगत को अपने किस स्वरूप से प्रकाश करते हैं और वहां की जितनी भी चीजें हैं वो स्वरूप शक्ति की किस वृत्ति से वो प्रकाशित, उसका उसकी एक और शक्ति है जिसको तटस्था कहते हैं, जो अंग है, किस मात्र है अंग, उसके द्वारा अनंत जितने जीव हैं सब वो प्रकाश, ये सब तीन में है। और तीसरी शक्ति है जिसको माया शक्ति कहते हैं, इस शक्ति के द्वारा अनंत को के बीच ब्रह्मांडों का यह जो बाहरी बाह्य रूप है वो सब उससे प्रकाश, जो कुछ हम इन आंखों से जो नहीं देखते अनंत ब्रह्मांड सब है, कहां ब्रह्मांड और क्या है उनकी विभूतियां भगवान की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं तो हम लोगों की इन शक्तियों से जीव भगवान की तथा शक्ति का ये प्रकाश है या उसी का परिणाम है तो चेतन, किंतु भगवान की अभटन घटन पटयसी स्वरूप शक्ति के एक वृत्ति के द्वारा जड़ जगत में प्रवेश करके अपने को जड़ समझ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव चेतन है उसको कभी भी अज्ञान नहीं होना चाहिए, ब्रह्म सब समझ की ज्ञान स्वरूप, वो ऐसा माया में नहीं फंसेगा, किंतु ये छोटा होने के कारण अंश होने के नाते माया के द्वारा उसकी ज्ञान की वृत्ति भग जाती, इसलिए थकने से वो भगवान को भी भूल जाता है और अपने को भी भूल जाता है और इसको अस्तित्व सदगुरुओं को ही मैं मानने लगता हूँ। अब ये बतला रहे हैं कि जन्मागत्य अस्य जगतस्य ये जगत की जो सृष्टि स्थिति और प्रलय जिनके द्वारा से हुआ अथवा ये कैसे हुआ, अन्य रूप से भगवान की शक्ति तीन रूप में हो करके और अन्य रूप में तीन जगतों को प्रकाश किया, यहाँ तक अन्वय हुआ। अब व्यतिरेक क्या हुआ, जीव चिन्मय होने पर भी अपने को भूल कर माया में फंस कर अपने शरीरों को मैं और मेरा समझ कर के किसी में लपित और भगवान को भूल, ये व्यतिरेक। अन्याय की तरफ सत्य और जितने भी उपादान ये जगत के सृष्टि के हैं, महत्त्व से लेकर अहंकार बुद्धि मन और उन लोगों से होने वाली इंद्रियां और पंच तत्व और पंच तत्वों के मूल जो रूप हैं उनको क्या कहते हैं,
तन्मात्राएं।
ये सब रूप रस गंध शब्द स्पर्श और उसके द्वारा ये सूचक, ये सब विषयों में वही अभिज्ञ है, ब्रह्मा तक भी नहीं प्रकृति भी नहीं है, इसलिए उनको बतलाया अर्थेषु अभिज्ञम् स्वरा, वो स्वयं प्रकाश तत्व, इनको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। तेरे ब्रह्म विदाज आग कवय, आग कवि जो है ब्रह्मा उनके हृदय में अपने तत्व को प्रकाशित किया, जिसमें जिसमें बड़े बड़े मुंजन से जब सूर्य लोग अर्थात देवता लोग मुक्त सुनती जिसमें मोहित हो जाते, ऐसे वेद का प्रकाश किया, शब्द ब्रह्म माने वेद और तेज बार निदान जैसा जब तीसर वो अमृता। अब जो बतलाया तीन प्रकार की सृष्टि तीसर जीव सर्ग और माया, ऐसे कहने में समझ में नहीं आया जब भगवान ने कैसे सृष्टि की और सब उदाहरण क्या है, इसको समझाने के लिए कहते हैं कि तेजो बाय मृदान जत्र विनिमय, अर्थात किस स्वर्ग का अर्थात किस सृष्टि का उदाहरण कथन के तेज है, तेज वो तेज माने अग्नि प्रकाश, जैसे हम लोग सभी बचपन में स्कूल में पढ़ने जाए तो सड़क पड़ता था तो वो बच्चे हम लोग वो पत्थर लेकर के पत्थर पर जोर से मारते तो उसमें आप किसी गाड़ियां निकल जाती। अच्छा तीन गाड़ी पहले थी या जब हमने मारा तभी निकली, उसके अंदर में है। ऐसे ही आग है तेज है सर्वत्र, किंतु घर्षण से कहीं कहीं पर वो आग पैदा, जैसे बनों में पेड़ों के संघर्ष से आग पैदा हो जाती है, वो भी किनी अपनी उसी में समा जाएगी। ये किस सर्ग जो है किस सृष्टि है, साधन के द्वारा कभी कभी झलक में बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि ज्ञानी विज्ञानी लोगों को कभी कभी झलक नहीं दी, सब समय नहीं। नारद जी जैसे व्यक्ति को जो कितनी कठोर साधना थी क्षण मात्र के लिए विद्युत की भांति उनके आराध्य देव दर्शन दिए और फिर थोड़ी देर के बाद में अंतर हो और बोले इस शरीर से उस चीज को तुम दर्शन करने योग्य नहीं हो, मैंने कृपा करके दिखला दर्शन करते करते जब यह शरीर दूर हो जाएगा मन बुद्धि अहंकार दूर हो जाए तब तुम्हारा किस सर्व उसमें इसलिए इस जगत में किस जगत का भगवान का दर्शन का वृंदावन का ये सब किस सर्व है ये कभी कभी जगत में सब समय और जीव सर्ग जो है जीव जो जितने हैं ये कैसे हैं जैसे पानी है पानी की दो अवस्थाएं यूं तो बहुत सी अवस्थाएं हैं जिसमें दो अवस्था पानी जब तरल होता है पानी जब बर्फ बन जाता है बर्फ होने पर कठोर बन जाता है और पानी रहने में अभी हम लोग कठोर हो गए हैं जीव भगवान का ही सदाच है ये उसकी तरलता है इसका शुद्ध स्वरूप है प्रेम से जब तरल हो जाएगा अथवा भगवान का भजन करते करते उसमें भगवान का दर्शन नहीं पा रहा है उस विरह में जबकि तरल हो जाएगा तब फिर भगवान का इसलिए अभी ये बद्धावस्था है अभी माया के द्वारा जड़ हो गया जैसे अत्यंत ठंड से हिमालय में पानी जम करके बर्फ हो जाता है बर्फ की चिल्लियां लगी जाती है ऐसे ही हम लोग अभी जमे हुए हैं हमारी बुद्धि जड़ हो गई और जब तरण होगा साधु संतों के सानिध्य में जब तरण हो जाएगा तो तरण होकर के भगवान की सेवा मिल जाएगी ये उपवास है एक पद्धति और एक ये तीनों जीवों के दो चीजें दिख रहा है और मृदंग मट्टी उदाहरण दिया किसका जब पूर्ण रूप में नहीं है सब आंशिक कुछ पूरा तो आई नहीं सकता कोई उदाहरण ये मनुष्य बंदर है ये मनुष्य गधा है तो सब पूर्ण रूप में लक्षण नहीं आई उसी तरह से सामान्य रूप में आंशिक लक्षण के द्वारा बता रहे हैं जैसे मिट्टी है कच्ची उसका घड़ा बना लो लोटी बना लो उसी का गणेश भी बना लो उसी का शंकर बना लो उसके तरह तरह की चीजें बना लो प्याला कप हड़िया सब कुछ बना लो उसी तरह से अलग अलग चीजें वो मिट्टी ही सब समय है मान लिया कि मिट्टी को पका दिया अब तो बनेगा नहीं किंतु नहीं कुछ दिनों के बाद में जब पुरानी हो जाएगी वो और अलग अलग कण बिखर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएगी फिर मिट्टी होकर मूर्ता वो मिट्टी है फिर मिट्टी में वो प्रवेश किसी न किसी रूप में कर उसी प्रकार से ये महत्व और ये सब चीजों का ये विकास ये जड़ ब्रह्मांड है इसमें पेड़ है पौधे हैं बीज है और सोना चांदी जितने धातु हैं सब इसी से सुंदर चंपे का पुष्प पेरी चमेली का पुष्प भी इसी से निकलता है और दुर्गंध भरे ये सब चीजें ये शक्ति क्या चीज है वही चीजें तो है जिसका रचना दुर्गंध होता है पीस भी उसी से और उसी से ही होता है दूध क्या चीज है घास ही तो है न क्या चीज है और वो भटकूरे में जो बीज होता है वो क्या चीज है मिट्टी का ही रस तो है इसलिए विभिन्न चीजें हैं उसकी उपमा ये मिट्टी दी कथन के थोड़ा सा विनिमय जत्र त्रिसर्गो अमृता ये त्रिसर्ग जो जीव सर्ग
सर्ग
और अंकित सर्ग माने जीव सर्ग और ये प्रकृति ये जगत का ये सर्ग ये कुछ स्थलों में कुछ असत्य होने पर भी अमृता होने पर मृता होने पर भी किंतु है सत्य सत्य है कैसे जब मनुष्य सत्य है तो उसकी छाया जो है वो झूठी होगी वो भी तो सत्य ही है इसलिए ये जगत व्यापार जो है ये भी मिथ्या नहीं है ये भी सत्य है किंतु वो जैसे सत्य सृष्टि का है ऐसा जीव भी नहीं है और ये भी जीव भी कुछ कुछ आंशिक रूप में किंतु ये कुछ अंशों में ये सत्य है किंतु नश्वर और परिणाम तो जिसके कारण से ये सब सारी सत्ताएं सत्य जैसे दिखती है। किससे? वो ब्रह्मायण प्रिन्नति वो स्वयं ब्रह्म है, नित्य नवीन रूप से वो बढ़ता है और दूसरों को भी वर्जित करता है और सब जगह में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है, जगत के बाहर भी और भीतर। यदि हम लोगों में भगवान की सत्ता नहीं होती तो हमारे जीव की और ये शरीर की सत्ता होती? यदि उनकी शक्ति नहीं हो तो चीज सर्ग भी नहीं होता। जड़ सर्ग की तो बात ही क्या है, जो कुछ है यदि भगवान की सत्ता उसमें है तब तो वो चीज है, और नहीं तो जिन चीजों में भगवान की सत्ता नहीं है जैसे पुष्प आकाश पुष्प, इसमें भगवान की कोई सत्ता है इसलिए वैसा है। इसी तरह से जो चीजें नहीं है उसे भगवान की सत्ता नहीं है इसलिए, और जहां जहां पर भगवान की सत्ता थोड़ी भी रहे तो वो वस्तु तो वहां पर त्रिसर्ग अमृता, ये त्रिसर्ग जो है ये अमृता, अमृता माने
नमृता
नहीं मिलता, कहीं कहीं पर वो असत्य जैसे दिखते हैं किंतु है नहीं। तीनों ही तीनों को बतलाया क्यों, जिनके कारण जिनके तटस्थ लक्षण के कारण ऐसा होता है वही अपने धाम में स्वयं अपने शक्तियों से परिवेष्टित शक्तियों से युक्त वो अपने धाम में, धाम माने अपने तेज में अपने स्थान में, धाम माने
आश्रय
गोकुल मथुरा वृंदावन द्वारका इत्यादि नित्य वहां पर, और भी उनके जो धाम है वैकुंठ इत्यादि में वो धाम में वो नित्य परिपूर्ण रूप में सदा निरस्त होकर, माया का जहां पर कोई भी व्यापार नहीं है निरस्त होकर सत्यम परम वो परम तत्व है उनका मैं ध्यान करता, इसलिए ध्यान करता हूं। जैसे ब्रह्मा ने ध्यान किया तो अंत में उनके हृदय में सबको प्रकाशित कर दिया, उसी प्रकार से हमारे हृदय में इस सब तत्व को हमारे हृदय में। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं साधारण रूप में, ये साधारण रूप में समझो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं पहले तो पहला अर्थ कई के रूप में, वो तीन प्रकार के अर्थ किए, एक अर्थ किया साधारण जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया, ये तो पहला अर्थ तुम्ही लोगों के आधार पर उन्होंने किया। दूसरा अर्थ उन्होंने किया केवल कृष्ण पर, तीसरा अर्थ किया राधा और कृष्ण पर, और चौथा अर्थ किया भक्ति पर, प्रेमा भक्ति के
अर्थ
और भक्ति के ऊपर भक्ति आदरस्थ इत्यादि।
वही सत्यम परम धीमहि, कृष्ण जो त्रिसत्य हैं और वही परब्रह्म हैं, वही निगूढ़ ब्रह्म हैं, गूढ़ ब्रह्म गूढ़म ब्रह्म
गूढ़म परब्रह्म
और अहो भाग्यम जद नंद गोप रजौकुशाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन इत्यादि भी बताया। तो उसी को करें सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य स्वरूप पर ब्रह्म का मैं, वो कैसे हैं जन्मादस्य गत, ये दूसरे अर्थ में ले सकते हैं कृष्ण के अर्थ में, जिनसे आद्य जन्मा
जिन्होंने जन्म आदि से लेकर के
आद्य
जन्म आदि से लेकर के सभी लीलाओं को प्रकट किया,
वो जीव गोस्वामी जैसा
किसमें,
वो जीव गोस्वामी जन्म गोकुल में मथुरा में या गोकुल में जन्म से लेकर के जितनी लीलाओं को प्रकट, ये जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी का जब बतलाएंगे तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्मादस्य जप आद्य श्रृंगार रस सबसे पहला शांत रस है या मधु रस, कौन रस?
आदि रस।
कौन रस है पहला? पहले तो आदमी कखर से अ से पढ़ता है ना, किंतु इस जगत का नियम है हम कखर नीचे से चलो, किंतु उस जगत का नियम क्या है? ऊपर से उतरता है, उसका मूल है ऊपर और नीचे उसकी शाखाएं और फल फूल पत्ते डाल उसका है
संसार आदि।
तो वहां पर जितने रस हैं इस जगत में, जब रस की शिक्षा करेंगे तो पहले शांत से हम चले, शांत दर्शन और किंतु जब विचार करेंगे वैज्ञानिक तरह से तो आद्य रस माने पहला रस ही है श्रृंगार रस, उसी से ही समस्त जितने भी रस होते हैं उसे प्रकाशित, उसी के अंदर में सब है आंशिक। जैसे कृष्ण प्रकट होते हैं तो जितने पहले के उनके अवतार हैं, अंश हैं, कला हैं, तद्रूप वैभव हैं और भविष्यत में भी जितने अवतीर्ण होंगे वो सब कृष्ण के साथ में उनके अंतर में प्रकट, सबको थोड़ी भूत होकर के रहते हैं। ऐसे श्रृंगार रस में ही ये सब रस है, इसलिए आदर्श। तो जिनसे श्रृंगार रस होता है प्रकटित होता है वो कैसे होता है? अन्वयादि इतरतश्च, अन्वय माने संयोग के द्वारा। कृष्ण का पहला राग होता है पूर्व राग से, उनको देखने से आरंभ करके मिलन तक ये सब जितने उनके भाव हैं ये एक उनसे संयोग। अब दूसरा होता है मिलने के बाद में जब विरह होता है तो विरह, यही दोनों प्रकार के प्रेम। इन्हीं प्रेमों की मूर्तियां कौन है? गोपियां। तो इसको ये बतला रहे हैं जब जिनके द्वारा कृष्ण ही यदि नहीं होते तो ये आदर्श कभी भी संभव नहीं, इसलिए इसके मूल ये कृष्ण। कौन कृष्ण है? स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही ये उस स्वयं वो है। अर्थेशु, यहां अर्थेशु माने जो श्रृंगार रस की जो 64 प्रकार की कलाएं हैं उन सब कलाओं में ये अत्यंत अभिज्ञ है। भक्ति से आरंभ करके जितनी 64 प्रकार की कलाएं हैं, इसका अतिरिक्त नित्य गीत वाद्य किसी को मनाना इत्यादि जितनी भी कलाएं हैं समस्त कलाओं में कृष्ण ही अभिज्ञ है इसके अतिरिक्त। बल्कि उन्होंने दिया है हर्त मुनि के हृदय में कुछ थोड़ा सा उन्होंने प्रकाश किया इसलिए थोड़ा सा वर्णन किया, किंतु उनका वर्णन अमांग मन सो गुरुचर प्राकृतिक पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। जिस रस में ये अभिज्ञ है कोई भी दूसरा अभिज्ञ नहीं, इसलिए अर्थेशु, अर्थेशु माने वो सब जो प्रेम की जो कलाएं हैं उन सब में ये अभिज्ञ है। स्वरा, उनको किसी से सीखना नहीं है, वो स्वप्रकाश वस्तु है। तेने ब्रह्म हृदय आद कवे मुनि अंत जब सूर्या, जिस दिशा में बड़े बड़े मुक्त महापुरुष लोग भी ब्रह्मा शंकर और दूसरे दूसरे लोग जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद भी आलक्षित अनुसार सा पुरुष ये सभी मोहित हो जाते हैं उसको, अर्थात तेने ब्रह्म रस ब्रह्म हृदय भक्त हृदय सुखदेव गोस्वामी इत्यादि ये उन्होंने प्रकाश किए। ब्रह्मा के लिए तो होगा शब्द ब्रह्मवे उनको हृदय में प्रकाश, किंतु सुखदेव गोस्वामी इत्यादि के हृदय में या व्यास और नारद के हृदय में उन्होंने तेने रस ब्रह्म उनके हृदय में प्रकाश। आद कवे, आदि कवे मुह्यंति ज सूरी लोग आदि कवि तक भी, आदि को मैंने भक्त इत्यादि भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, और नहीं तो आदि कवि जब इधर में लाएंगे तो आदि कवि ब्रह्मा नारद व्यास सुखदेव इनके हृदय में रस ब्रह्म की उत्पत्ति ने प्रकट किया, जिससे कि श्रीमद् भागवत जैसा रस ग्रंथ उन लोगों ने जगत में प्रकाश, नहीं तो ये कभी नहीं हुआ। क्यों? वो दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत का फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम। ये श्रीमद् भागवत ही रस का आलय, ये यदि नहीं प्रकाश करते तो नहीं हो सकता था। मोयंत जब सूर्य, जिसमें ये सब जो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महर्षि और ब्रह्मा इत्यादि हैं, शंकर भी हैं, ये सब लोग जिसमें मोहित हो गया उसको तेज उभार मृदा, जिस कृष्ण के वृंदावन में बिहार में जो लीला हुई उन लीलाओं को दर्शन करके, उस रस को दर्शन करके, जिन्होंने बंसी के द्वारा जिस रस को उन्होंने वर्षा की, उस रस से हुआ क्या? तेज उबार मृदान जप्रतिमय, जिससे ये चंद्र जो हैं वो क्या हो गए? मिट्टी के समान बन गए। कहा चंद्र सरोवर पर वो चलना भूल गए, और जो तेज हैं वो मलिन हो गए। उस रास में कृष्ण के सौंदर्य देख करके वह एकदम मलिन बन गए, और तेजो बारी जमुना का जल जो था वो मट्टी बन गया, पत्थर जैसा कठोर बन गया, और मृदंग पहाड़ गिरिराज और चरण पहाड़ी
पिघल गई,
और भूमि सब पिघल गई, जिनके बंसी की ध्वनि से, जिनके रूप को सौंदर्य को देख करके, और बंसी का यह रस वर्षा से सब उलट उलट, जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ सा हो गया। कायस्त्रीं ते कल्पदायत वेन वीत सम्मोहिता अर्चरिता न चरेत त्रैल त्रैलोक्यम जगो दुर्गाप्रकांड विक्रम। तो कारण है तेजो बार मिला, जिसके साधारण रूप में दर्शन से, जिसके रूप के माधुर्य से, वंशी के निनाद से विनिमय, एक दूसरे जैसे अर्थात जड़ चेतन जैसा, चेतन जड़ जैसा, तेज साधारण जैसा दिखाई पड़े, मलिन और बारी जमुना पर्वत इत्यादि जैसे कठोर बन गई, और मृदंग मृदंग माने मिट्टी का जो ये रूपांतर, जो पत्थर इत्यादि वो सब पिघल करके पानी बन गए। जहां विनिमय जब तक श्री स्वर्गो अमृषा, जहां पर की तीन स्वर्ग, तीन स्वर्ग क्या? गोकुल, मथुरा और द्वारका, मथुरा और ये त्रिस्वर्ग अमृषा, ये नित्य परम सत्य है, और राधिनी संबित और संधिनी, ये तीनों जो शक्तियां हैं, ये तीन जो स्वर्ग हैं, और इनके जो प्रकाश हैं सब समय नित्य हैं और सर्वत्र ये व्याप्त है त्रिस्वर्ग। और कृष्ण की त्रिविध लीलाएं हैं, कैसी लीलाएं?
बाल्य,
ये तीन प्रकार की जो लीलाएं हैं, ये त्रिसर्ग जो हैं सब समय नित्य सत्य हैं, उन सब के साथ में अपनी शक्तियों के साथ में धामना स्वयं अपने धाम में अपनी शक्तियों के साथ में नित्य जो विराजमान हैं, निरस्त कहो कम, वहां पर माया का कोई भी कुछ नहीं है, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परम सत्य स्वरूप जो कृष्ण है उनका मैं ज्ञान का ध्यान, वो हमारे ध्यान में पड़े। अब तीसरा, केवल कृष्ण से नहीं रस होगा, नहीं हो सकता। शक्ति प्रधान रहेगी, राधा कृष्ण सीता राम इत्यादि जितने भी हैं, ये शक्ति की प्रधानता है। ये जो कुछ जगत में दिखता है शक्ति की ही वैचित्रता दिख पड़ती है, शक्तिमान नहीं दिख पड़ता। उसका स्वरूप लक्षण है केवल इच्छा शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। और जो कुछ देखते हैं शक्ति की ही ये भी। तो यहां पर कहते हैं जन्मादस्य जतः सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान की हिलादरी शक्ति रूपी महाभाव रूपा जो राधा जी और उनके साथ में रसराज जो कृष्ण है, उन दोनों का मैं ध्यान करता हूं। जो अपने धाम में सब समय लीला विलास में रहते हैं, अपनी शक्तियों और अर्थात अपनी सखियों इत्यादि गोपियों के सहित, उनका मैं ध्यान करता हूं दोनों का, जिससे जन्म आदि श्रृंगार रस का जिससे जन्म हो, अन्वय और व्यतिरेक रूप में होता है। कैसे अन्वय रूप और व्यतिरेक रूप में? संयोग के रूप में। राधा जी के साथ में कृष्ण का साथ यदि संयोग होगा तो ये महाभाव रूढ़ अधिरूढ़
मोदन
में मोदन
मदन मादन
मादन
मोहन
दिव्य दिव्योन्माद प्रेम वैचित्र यहां तक पहुंच जाए, जो कहीं नहीं प्रकाश में। और वियोग में, वियोग में चित्र जल इत्यादि तक मोहन के रूप में यह पहुंचता है। यह दोनों न रहे तो रस परिपूर्ण नहीं होगा, इसलिए मिलन और वियोग दोनों से ये मिल करके ये कृष्ण का यह जो रस है आद्य रस ये प्रकाश। इनमें ये कृष्ण और राधा जी अभिज्ञ है। रस कैसे निष्पत्ति होगी इसके लिए राधा जी अभिज्ञ हैं, इसलिए अभिज्ञ होकर नाते वो मान कर लेती है। किस लिए? रस को नित्य नूतन बनाने के लिए मान कर, और कृष्ण को अपनी सेवा में नियुक्त कर देती है, नहीं तो रस बनता ही नहीं। इसलिए राधा जी अभिज्ञ है, उधर कृष्ण भी अभिज्ञ है, परम विदग्ध है रस विषय में, इसलिए वो राधा जी का मान दूर करने के लिए सब कुछ कर प्रेम के वशीभूत हो जाते। ऐसा कभी भी किसी भी भगवत अवतार में होने नहीं, इसलिए किसी भी अवतार में ये सब रस नहीं हुआ। और अवतारों में अधिक से अधिक ऐश्वर्य की लीलाएं हुई, माधुर्य की लीलाएं नहीं हुई, तो बहुत अल्प हुई, प्रकाश नहीं है। किंतु कृष्ण में ही ये लीलाएं, राधा कृष्ण के लीलाओं में ही यह रस पर पूर्णतम तक पहुंचाया। अभिज्ञ स्वराग, राधा जी भी अपने में पूर्ण है और कृष्ण भी अपने में परिपूर्ण है दोनों। तेने ब्रह्म हृदा, इन्होंने वही रस ब्रह्म सुखदेव गोस्वामी के हृदय में आदि कवि प्रकट किया, क्योंकि ये कृष्ण के सुख हैं, राधा जी के सुख हैं और कृष्ण के हाथों में गए हैं, और तब इनकी अनुभूति हुई है, हैं सुख, किंतु उनके हृदय में इन लोगों ने दोनों ने मिलकर के प्रकाश किया उस रस ब्रह्म, तब ये जगत में उसको गुरु परंपरा की धारा से अब तक होते। जत्र आद मुह्यंति जत सूर्य ब्रह्मा शंकर इत्यादि, वही अर्थ सब लोग इस रस में मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं इनको। यहां तक कि ब्रह्मा भी ब्रज में आए किंतु इस रस तक नहीं पहुंच पाए, बस बाल्य लीला एक देखी और ऐश्वर्य देखा, जो उन्होंने अभासुर को भी मुक्ति दे दी, और इसी में वो आश्चर्यचकित होकर के बस इतने ही में रह गए। कृष्ण ने कुछ दिखलाना भी चाहा तो वो पहले चतुर्भुज रूप में दिखे और फिर इसके बाद में कृष्ण रूप में देखे। जितनी जितनी जगत के जितनी भी वृक्ष लता गुल्म सब कुछ को उन्होंने कृष्ण के रूप में दर्शन, यहाँ तक कि उनकी बंसी तंसी सब कुछ वो कृष्ण हुए। बस कुछ उनके दिमाग में नहीं आया तो वो लगती की भांति में गिर पड़े और वो वर्णन करने लगे। वो श्रीमद् भागवत के 14वें दशम के 14वें कुछ कुछ वर्णन किया। फिर इस तरह से ब्रह्म इत्यादि जिसमें मोहित हो जाते हैं, तेज बार मृदान जत्र विमय, इनके दोनों के मिलने से जो रस होता है उस रस में यही बतलाया जाए। पहले जमुना चंद्र
और चरण पहाड़ी
इत्यादि सब द्रवित हो जाते हैं, आज भी उनके चरण चिन्ह वहां पर देखे जा सकते हैं। जब तक त्रिस्वर्गो अनमृषा, त्रिस्वर्गो राधा कृष्ण का त्रिस्वर्ग क्या,
उर्वराग मिलन और विप्रलंब,
यही सब होगा कुछ। ये तीनों सर्ग जो है त्रिस्वर्ग अमृत, अर्थात उनकी जो लीला है ऐसा हो दिया वृंदावन में पूर्ण लीला उनकी परिपूर्णता, मथुरा में पूर्णता, अर्थात सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि ये सब वहां की, और द्वारका में पूर्ण उनकी, वहां पर रुक्मिणी सत्यभामा के रूप में राधा जी और कृष्ण मिले। इस तरह से अपने धाम में सदा स्वयं सदा निरस्त रूपम सत्यम परम धीमहि, उस राधा और कृष्ण को मैं ध्यान करता हूं हमारे हृदय। और भक्ति वृत्ति के लिए क्या कहा, जिस कृष्ण से कृष्ण की कृपा से ही केवल, अर्थात भक्ति जब तक नहीं रहेगी कृष्ण को नहीं हम लोग पास। इसलिए जन्मादर्श जतः भक्ति के द्वारा ही भक्ति का जन्म या प्रादुर्भाव होता है। पहले होता है साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति। अन्वय और इतर, अन्वय माने क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये हुआ अनुकूल अनुशीलन, और प्रतिकूल जो कि त्याग करने लायक है अपराध अनर्थ इत्यादि सबको दूर करना, कुटी नाटी इत्यादि जीव हिंसा इत्यादि है ये सबको दूर करना। इसके द्वारा मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा वेग, उदर और जो जो गुस्वामी ने और इन सब ने, इन सबको दूर किया जाए और भक्ति को ग्रहण किया जाए। अनुकूल अनुशीलन और प्रातिकूल्य वर्जन, अपराध इत्यादि और भाव, इसके द्वारा भक्ति स्वतंत्र है, चिन्मय वस्तु है। जब देखती है कि ये इसके हृदय में हमको उत्पन्न होना है तो भक्ति अनुग्रह करके उसके हृदय में जीवित होता है। नामात्मा प्रवचन लभ्य, उसी तरह से भक्ति का भी। और स्वराग, किसी अन्न जोग तपस्या प्रति इत्यादि के द्वारा भक्ति प्रकटित नहीं होगी, ज्ञान से भी नहीं होगी, जोग से भी नहीं होगी। इसलिए बतलाया अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान के द्वारा नहीं होगा। ज्ञाने प्रयासम उदपाश्य, ज्ञान के प्रयास को छोड़ो, जोग तपस्या प्रथम साध्याय सदाचार इत्यादि से वो भक्ति नहीं होगी। भक्ति स्वतंत्र अवलंबनान, भक्ति स्वतंत्र होगी,
मुक्ति निरादर भक्ति।
तेने ब्रह्म हृदया ज आद कवे भूयंत जब सूर्य, वही भक्ति रे मैनं नयति भक्ति दर्शयति
भक्ति रे भूयसि
भक्ति, वही भगवान का दर्शन कराती है। इसलिए भक्ति आग कवे माने ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हुई और उनसे नारद, नारद से व्यास, इस तरह से वो भक्ति की परंपरा आज तक भी गुरु के परम धारा में आ रही, जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग, ज्ञानी लोग और सब लोग मोहित हो जाते हैं। किसमें? प्रेम भक्ति के लिए। तेजो बार मृदान जत्र विनिमयो, इसके लिए शायद देखना पड़ेगा क्या जथा विनिमयो जत्रतीश और वो अमृषा। भक्ति के तीन ये जो भाव, साधन, भाव और प्रेम, तीनों ही सत्य हैं। तीनों अवस्था में ही भक्ति निर्गुणा है, केवल साधना के और साधक के मन के तारतम्य से उसको ऐसा कहा जाता है, किंतु भक्ति एक ही है। वो अपने धाम में निरंतर रह करके और कृष्ण की सेवा करती है और जीवों को भी लेकर के उन्हीं पर उनको दर्शन, ऐसी भक्ति के लिए हम सत्यम परम अधिमयी हम उनका सात बजिया। आज अभी हम लोगों को कृष्ण जन्मभूमि में जाना है, इसलिए आज यही पर हम समाप्त करते हैं। कल से इसका और दूसरा भाव और अर्थ जो है हम बढ़ते हैं आज। अच्छा, हम लोग